नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्रों में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना आज से शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी की 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर खंड पर पावली खास और मेरठ छावनी स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल सफलतापूर्वक चालू। और दिल्ली परिवहन निगम स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक पर राजनीति न करने की अपील की।
आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक विकसित भारत केवल बुनियादी ढांचे, रेलवे या आर्थिक संकेतकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है।
विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में 7 अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है।
इससे पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए गए। इनमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश करते हुए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत दिल्ली और जम्मू कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नारियों का सशक्तिकरण करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सदन को नारी शक्ति के हक का हिसाब देना होगा।
मैं पूछना चाहती हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव, मैंने याद कराना चाहती हूँ पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है, ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें।
लोकसभा में चर्चा जारी है। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना का काम आज से शुरू हो गया है। यह अभियान नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रों में आज से शुरू हो गया। यह अभियान 15 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर लोगों से आंकड़े जुटाएंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पहली बार शुरू की गई स्वगणना सुविधा से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। लगभग 12 लाख परिवारों ने सफलतापूर्वक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा की है। जिन निवासियों ने अपनी स्वगणना पूरी कर ली है उन्हें सलाह दी जाती है कि प्रगणक के पहुंचने पर वे उन्हें अपना स्वगणना आईडी दिखाएं। जिन लोगों ने स्वगणना का विकल्प नहीं चुना है वे सीधे प्रगणक को संबंधित जानकारी दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में नई अत्याधुनिक लैब्स स्थापित की जाएंगी तथा मौजूदा लैब्स को आधुनिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिल्ली के आईटीआई में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करेगा। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ते ने बताया कि आईटीआई जहांगीरपुरी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये लैब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे प्रशिक्षकों को आधुनिक इलेक्ट्रिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली के संचालन, खराबी की पहचान और रखरखाव का व्यापक व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार इस कड़ी में आईटीआई हरिनगर में वेल्डर लैब का व्यापक आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लैब में उन्नत वेल्डिंग मशीनें, सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण सुविधाएं और आधुनिक निर्माण उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा आईटीआई मयूर विहार में एक नया ईवी लैब स्थापित किया जाएगा। साथ ही आईटीआई निजामुद्दीन में ऑटोमेटिव सेक्टर के लैब्स को आधुनिक बनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
दिल्ली के भाजपा सांसदों ने आज राजधानी में लंबित चली आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। उन्होंने दिल्ली में 200 कॉलोनियों को ओ जोन से हटाया, 69 अपशिष्ट कॉलोनियों को नियमित करना तथा मास्टर प्लान को शीघ्र नोटिफाई करने का आग्रह किया। सांसदों ने कहा कि जिन सड़कों पर 70% से ज्यादा दुकानें हैं उन सड़कों को व्यावसायिक घोषित किया जाए। वहीं बैठक के दौरान सभी सांसदों ने दिल्ली देहात के बचे हुए गांव में लाल डोरा की आबादी को भी नियमित करने का सुझाव दिया। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राजधानी के फ्लाईओवर जोन के अंतर्गत चल रहे एकीकृत ट्रांजिस्ट कॉरिडोर विकास और सड़क कनेक्टिविटी योजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्लाईओवर, अंडरपास, सड़क, ऊपरी पुल और पैदल पार पुल सहित अन्य श्रेणीबद्ध पृथक संरचनाओं के डिजाइन कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज पूट खुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री सिंह ने दवाइयों की उपलब्धता और अमरनाथ यात्रा के लिए हो रहे मेडिकल चेकअप में आ रही समस्याओं का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के सख्त निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि लोगों को सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज दिल्ली अग्निशमन सेवा के कामकाज की समीक्षा की, जिसमें आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और कर्मियों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 में प्रस्तावित संशोधनों की जांच करते हुए निवासियों, व्यापारियों तथा कारोबारियों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज कहा कि समय और जरूरत के अनुसार परिवर्तन जरूरी है और शिक्षा परिवर्तन का सबसे बड़ा उपकरण है। उन्होंने यह बात कॉफी विद वाइस चांसलर के दूसरे अध्याय में हंसराज कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान कही। दिल्ली नगर निगम ने आज मंडावली और प्रीत विहार वार्डो में गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट और रेलवे ट्रैक के किनारे की स्वच्छता का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम ने स्वच्छता की स्थिति, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र साफ सफाई का आकलन किया। निगम ने बताया कि यह जमीनी कार्रवाई राजधानी भर में स्वच्छ वातावरण और मजबूत नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणामों में राजधानी के सरकारी विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में उत्तीर्ण प्रतिशत 97.23 दर्ज किया गया है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर है और राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। यह आंकड़ा वर्ष 2025 के 94.64% से 2.59% अधिक है। पिछले वर्ष 300 की तुलना में इस वर्ष 497 विद्यालयों ने 100% परिणाम हासिल किया है। 924 विद्यालयों ने 90% से अधिक परिणाम दर्ज किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए 75 सीएम श्री स्कूल नए मानक स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में एआई आधारित भाषा प्रयोगशालाएं और करियर लैब स्थापित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सफलता का श्रेय छात्रों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए बुनियादी ढांचे के सुधारों को दिया है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे ने गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर खंड पर रेल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और यात्रा समय को कम करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पावली खास और मेरठ छावनी स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल सफलतापूर्वक चालू कर दिए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मेरठ सहारनपुर कॉरिडोर से यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुगम और कुशल यात्रा अनुभव प्रदान करना है। रेलवे ने कहा कि डबल डिस्टेंस सिग्नल प्रणाली के माध्यम से उच्च गति ट्रेनों के लिए बेहतर दृश्यता और नियंत्रण सुनिश्चित होगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला किया है। इस नई बढ़ोतरी के साथ डीटीसी बसों की कुल संख्या बढ़कर करीब 6,300 बसों तक पहुंच जाएगी। इनमें 4,538 इलेक्ट्रिक बसें हैं और 1,759 सीएनजी बसें शामिल हैं।
सरकार ने बताया कि हरित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दिल्ली और रोहतक के बीच एक नई अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू की जाएगी। सरकार ने कहा कि इस बस का रूट ISBT कश्मीरी गेट और पीरागढ़ी चौक से होकर गुजरेगा, जिसमें टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, रोहद, सांपला और रोहतक बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थान शामिल होंगे। साथ ही ईस्ट विनोद नगर डिपो में एक आधुनिक प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा। यह परिचालन क्षमता और कर्मचारियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
दिल्ली पुलिस ने आज ऑपरेशन साइबर हॉक के अंतर्गत साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी धोखाधड़ी से प्राप्त धन को निकालने के लिए फर्जी बैंक खातों का उपयोग करते थे। पुलिस ने कहा कि पूरे गिरोह को ध्वस्त करने, वित्तीय गतिविधियों का पता लगाने और इसमें शामिल विदेशी मास्टरमाइंडों की पहचान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को जल्द आर्थिक लाभ का वादा करने वाली एक योजना का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी है और AI से बनाया गया है। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा और तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल शाम के समय बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्रों में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना आज से शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी की 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर खंड पर पावली खास और मेरठ छावनी स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल सफलतापूर्वक चालू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।